ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, भारत की आर्थिक तरक्की में महिलाओं के बढ़ते योगदान पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रही हैं महिलाओं से संबंधित मामलों की विश्लेषक प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी, वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन और नीति आयोग द्वारा महिलाओं की वित्तीय भागीदारी से जुड़ी हालिया रिपोर्ट की सहलेखक सोनल जेटली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
जब हम महिलाओं के समावेशी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं की समाज में हिस्सेदारी की बात होती है, सांस्कृतिक स्तर पर उनकी हिस्सेदारी की बात होती है और सबसे अहम पहलू महिलाओं की आर्थिक हिस्सेदारी की बात। क्योंकि ये तथ्य है कि हमारी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में अभी महिलाओं की हिस्सेदारी 18-20% है आधी आबादी होने के बावजूद, और कोशिश है कि हर स्तर से महिलाओं की हिस्सेदारी भारत के जीडीपी में बढ़ाई जाए, उनकी वर्कफोर्स में हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए, उद्यम से उन्हें जोड़ा जाए, जिससे कि आर्थिक विकास सुनिश्चित होते हुए उनका सामाजिक विकास हो सके और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम स्तरों पर योजनाओं से जोड़ते हुए उनका सशक्तिकरण किया जा सके। तो आज मुख्य तौर पर हम कार्यक्रम में महिलाओं की आर्थिक हिस्सेदारी से किस तरह से भारत में आर्थिक समृद्धि की संभावनाएं हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और साथ में हम एक नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे जिसमें ये बताया गया है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाएं अब ऋण लेने की ओर ज्यादा रुझान ले रही हैं, जिसमें ये आया है कि महिलाओं का जो क्रेडिट स्कोर की निगरानी है वो बीते कुछ समय में बढ़ी है। तो इस पर भी हम विस्तार से आज कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ विशेषज्ञ शामिल हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर गहरी नजर रखने वाली हमारी विशेषज्ञ प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी हमारे साथ स्टूडियो में है, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन भी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है, आपका भी स्वागत है,
धन्यवाद।
और नीति आयोग की जिस रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए और उस पर हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी है सोनल जेटली जी, जो इस रिपोर्ट की को-ऑथर है, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी से एक मूल सवाल से। प्रोफेसर रामास्वामी, कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जब से संविधान बना है, लोकतंत्र को लेकर जब से हम आगे बढ़े हैं, तब से लेकर अब तक हमने महिलाओं को नीतियों के स्तर पर तो बराबरी दी है। आपको क्या लगता है कि भारत की नीतियां, चाहे वो सामाजिक रूप से रही हो, आर्थिक रूप से रही हो, और इसमें अभी क्या प्रगति है और किस तरह से इसमें आगे आने की जरूरत है? एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी शुरुआत में।
देखिए, कहते हैं कि भारत की जो संविधान है वो एक सोशल रेवोल्यूशन डॉक्यूमेंट है। ये तय किया गया था कि शुरुआत के तौर से ही महिलाओं को समान रूप से जो भी अधिकार देना है वो देना है, और ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। और साथ ही ये भी था कि उनको समान अधिकार और प्रयास ये भी था कि जो पिछड़ापन था, खासकर सिर्फ महिलाओं के प्रति नहीं, पूरा समाज में जो एक पिछड़ापन था वो उसको भी ठीक करने की बहुत बड़ा योगदान संविधान का रहा है इसमें। और पिछले 10 साल में तो ये एक कह सकते हैं इसको और भी जरा बढ़ावा दिया गया है कि इतने सारे योजनाएं, इतने सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं कि महिला जो है उनकी शिक्षा, उनकी रोजगार और उनकी जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये तीनों पे कैसे फोकस करके महिलाओं को आगे बढ़ने में सहायता दे सकते हैं।
जी अदिति टंडन जी, आपसे मैं अब जुड़ना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि वो कौन से प्रमुख प्रयास रहे हैं बीते समय में जिससे हमने देखा है कि महिलाएं अब आर्थिक तौर पर सशक्त होकर, चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, शहरों के स्तर पर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी हो, हम उनकी आर्थिक हिस्सेदारी को थोड़ा बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो कैसे आप इस प्रगति को देखेंगे और कुछ प्रमुख योजनाओं पर अगर आप प्रकाश डालना चाहें तो?
देखिए, जो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट 2011 का सेंसस लें कमल जी, तो हम देखेंगे उसमें 58.7% जो हैं बैंक अकाउंट्स थे, हाउसहोल्ड्स में बैंक अकाउंट्स थे
जी।
तो जब हम ओवरऑल परिप्रेक्ष्य भी देखें तो भी एक बहुत लो नंबर था। उसको बढ़ाते बढ़ाते 2016 तक ये बैंक अकाउंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए, करीब 90% से भी ऊपर हो गए। ये जो प्राइवेट और एनजीओ के माध्यम से सर्वेज होते हैं उनका ये फाइंडिंग है, क्योंकि सेंसस अभी उसके बाद हुआ नहीं है तो वो तो हमें बाद में पता लगेगा कि कैसे होगा, वो पैंडेमिक में डिले हो गया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, टर्निंग पॉइंट फाइनेंशियल इंक्लूजन में अगर हम देखें रीसेंट हिस्ट्री में, तो वो आया सबसे पहले 2014 में। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना का लॉन्च हुआ और उस योजना का सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो जनधन बैंक अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको आधार के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से बांध दिया जाए। उससे क्या हुआ कि बहुत सारी महिलाओं को सहूलियत दी गई सरकार की तरफ से कि जो पेपर वर्क होता था बहुत लंबा चौड़ा, डॉक्यूमेंटेशन होती थी, उनको आइडेंटिटी प्रूफ की वजह से वो बैंक अकाउंट्स नहीं खोल पाते थे, उन सब सहूलियतों को दिया गया और पेपर वर्क को कम करके बहुत सारा एम्फेसिस दिया गया कि महिलाओं के बैंक अकाउंट्स बढ़ाए जाएं। रिजल्ट यह हुआ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो जेंडर गैप है बैंक अकाउंट्स को होल्ड करने का, जिसमें महिलाओं को हमेशा डिसएडवांटेज रहता था, वो 20 परसेंटेज पॉइंट्स था 2014 में और 2017 तक घटते घटते वो 6 परसेंटेज पॉइंट्स तक आ गया
जी।
तो इसका मतलब कि हैंड होल्डिंग से जब महिलाओं को ये मौका मिला कि वो भी अपने बैंक अकाउंट्स खोल सकें, तो हमने पहला, जिसको कहते हैं फर्स्ट माइल, हमने कवर करना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है, ये ऑनगोइंग है, इसमें अभी भी प्रयास चल रहे हैं। जो दूसरा बहुत बड़ा स्टेप मैं मानती हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो सरकार की चलती है। हम सब जानते हैं कि करीब 319 स्कीम्स का जो है कैश बेनिफिट, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के अकाउंट्स में जाता है और जितना पैसा गया है लोगों के अकाउंट्स में उसमें से ऐसा माना जा रहा है, हमें सर्वेज ये बता रहे हैं कि करीब 50% पैसा जो डीबीटी के माध्यम से डिसबर्स हो रहा है वो 50% तक एटलीस्ट विमेन बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में जा रहा है। सो इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स से, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स हैं, उससे महिलाओं की हैंड होल्डिंग हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी महिलाएं पहुंच गई हैं जहां उन्होंने पहुंचना था, पर प्रयास जारी है
जी। तो जो आर्थिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जैसा कि आपने कहा, उसमें बैंकिंग व्यवस्था से जिस तरह से महिलाओं को जोड़ा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और बैंकिंग व्यवस्था का ही ये नतीजा रहा है कि अब महिलाएं कई योजनाओं के तहत ऋण की भागीदार बनी है, उन्हें लोन मिल रहे हैं और अपने वो क्रेडिट स्कोर की निगरानी कर रही है। अब मैं आना चाहूंगा सोनल जेटली जी के पास, क्योंकि वो इस रिपोर्ट की को-ऑथर है। दरअसल 3 मार्च को नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक था फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, विमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो किस तरह से अपने क्रेडिट स्कोर की निगरानी कर रही हैं और क्रेडिट स्कोर की निगरानी करने वाली महिलाओं की संख्या बीते समय में कितनी बढ़ी है। तो आइए जुड़ते हैं सोनल जी से। सोनल जी, बताएं इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से कि इस रिपोर्ट से क्या निकलता है और कैसे ये रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं का फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है।
नीति आयोग के साथ हमने रिपोर्ट किया है। बेसिकली इसके जो की फाइंडिंग्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो महिलाओं का फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो काफी बड़ा है। यहाँ पे हम इस रिपोर्ट में वी हैव अटेम्प्टेड कि उनका जो क्रेडिट अपटेक है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है या फिर स्टैग्नेंट है, वो समझने के लिए हमने काफी एनालिसिस किया। जो क्रेडिट ब्यूरो डेटा को यूज करते हुए वो एनालिसिस किया गया और उससे ये हमें जानने को मिला है कि काफी महिलाएं आगे बढ़ के ऋण ले रही हैं। जो पहले महिलाएं फॉर्मल क्रेडिट को एक्सेस इतना नहीं करती थी, वो द अमाउंट ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट इज इंक्रीजिंग अमंगस्ट वुमेन। सो वो काफी क्रेडिट एक्सेस बढ़ रहा है। पिछले 6 सालों में एक्चुअली 2019 से लेकर 2014 तक आप देखें तो इसमें चौगुनी तरक्की हुई है, 4-fold राइज जिसको बोलते हैं इन वुमेन बोरोअर्स जो बिजनेस के लिए लोन लेना चाहती हैं। सो ये एक बड़ी फाइंडिंग है रिपोर्ट की। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस भी वुमेन में बढ़ रहा है और ये सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं बढ़ रहा है, ये Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी काफी बढ़ रहा है। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा राइज है वो हम देखते हैं Tier 2 और Tier 3 सिटीज से आ रहा है और सेमी अर्बन एरिया से भी वो राइज आ रहा है, जिसमें कि काफी महिलाएं अपना क्रेडिट स्कोर खुद मॉनिटर कर रही हैं, जो कि एक इंडिकेशन है कि महिलाओं में क्रेडिट अवेयरनेस और अपना क्रेडिट स्कोर कैसे सही रखना है और अपना क्रेडिट हेल्थ कैसे मॉनिटर करते रहना है, उसकी अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी बढ़ रही है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि जब फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ता है रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट भी बढ़ता है, मतलब
जी
हम ऋण ले और उसको टाइमली वापस करें, ताकि हम एक बड़ा साइज का लोन अगर हमें अपने बिजनेस के लिए चाहिए तो वो भी आगे
जी
जाके ले सकते हैं। सिमिलरली जब हम स्टेट्स देखते हैं कि कौन से स्टेट्स में ये सबसे ज्यादा बड़ा है, तो जो सबसे टॉप 5 स्टेट्स निकल के आते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए, वो तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश स्पेशली एक हाईलाइट है, क्योंकि वहां पे इट्स अ बहुत ही बड़ा स्टेट है
जी
और वहां पे महिलाओं का फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी बढ़ रहा है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। और सदर्न स्टेट्स तो यूजुअली काफी आगे रहते हैं, बट महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न स्टेट्स में भी काफी इम्पैक्टफुल फाइंडिंग्स निकल के आई हैं। सो ओवरऑल काफी पॉजिटिव है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन महिलाओं का काफी तेजी से बढ़ रहा है, और महिलाएं सिर्फ कंजम्पशन के लिए ही लोन नहीं ले रही हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लोन ले रही हैं।
जी
गोल्ड लोन्स का भी प्रेफरेंस काफी
जी
बड़ा है,
जी जी
और तीसरे नंबर पे बिजनेस लोन्स का प्रेफरेंस बढ़ा है, जिसका
जी
मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इकोनॉमी में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा रही हैं
बिल्कुल
बिजनेस ओनर्स के रूप में।
जी बिल्कुल। सोनल जी आप जुड़े रहिए हमसे, आपसे चर्चा जारी रहेगी। सुशीला रामास्वामी जी आपसे मैं अगला सवाल रखूंगा। जैसा कि सोनल जी अभी बता रही थी कि महिलाएं ऋण ले रही हैं, क्रेडिट स्कोर की निगरानी कर रही हैं, तो मेरा सवाल यह है कि जो महिलाओं को जब आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिलता है इकोनॉमी में, वो कितना महत्वपूर्ण होता है समाज के लिए, और असलियत में उनका सशक्तिकरण किस तरह से सुनिश्चित होता है जब वो एक एंटरप्रेन्योर बनती हैं, ऋण लेती हैं, बैंकों में जाती हैं, वहां से पैसा निकालती हैं, और साथ में जैसे हमने बीते वर्षों में कुछ योजनाएं देखी, मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, जिसमें फोकस महिलाओं पर किया गया कि महिलाएं अपने उद्यम लगाएं, बैंकों से लोन लें और उद्यम लगाकर अपने जैसी ही कई महिलाओं को और रोजगार दें, जिससे कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण भी हो सके। तो इस विचार को आप कैसे देखती हैं, अपने अनुभव से अगर आप बता पाए।
देखिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बोलिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस
जी
इज द की टू गुड लाइफ। ये तो कोई दो राय है ही नहीं। नारीवाद का जब से शुरुआत हुआ है, ये एम्फेसिस रहा है एजुकेशन, शिक्षा, उसके साथ रोजगार, और औरतों को समान रूप से हक मिले संपत्ति में, वो जो कमाते हैं उनके ऊपर एक राइट हो। तो ये सारा जो है, ये शुरू के दौर से ही एम्फेसिस रहा है। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन की जो बात हो रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी, कैसे क्रेडिट लिया जाए, कैसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह उसको खर्च करें, और कितना वो अपना जो कमाते हैं उसके वो हक रखें, ये सारा बहुत जरूरी है। और अगर ये सारा पॉजिटिव ट्रेंड्स जो रिपोर्ट पे कहा जा रहा है, अगर ये ऐसे ही जारी रहे, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। क्योंकि देखिए, हर वक्त कहते हैं महिला जो है समाज को ही बनाती है और परिवार को भी बनाती है। कहते हैं ना, एक महिला को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा समाज सुधरता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड इन दिस डायरेक्शन। और ऊपर से इफ दे कैन, वो पैसा जो कमाते हैं उसके ऊपर दे हैव अ राइट ओवर इट, कि हम किस तरह उसको इन्वेस्ट करें, कहाँ पे खर्च करें, एक ऑटोनोमी जो कहते हैं ना, कि कोई किसी को जवाब ना दे कि हमने किस पे खर्च किया, ये बहुत जरूरी चाहिए वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। तो ये तो मैं मानती हूँ एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और इसके साथ जो है, जो इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स, ये सारा भी सीखना जरूरी है। तो एक इंक्लूसिव अप्रोच टू एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इज द की टू गुड लाइफ। और गुड लाइफ ये भी कहता है कि आप काम करोगे तो आपका एक डिसिप्लिन लाइफ होगा, आप गरीबी में कभी फंसोगे नहीं, और ऊपर सबसे ऊपर एक पर्पस ऑफ लाइफ भी होता है। सो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, अगर ये रिपोर्ट जो कह रहा है इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो दिस अ वेरी गुड डेवलपमेंट।
अदिति टंडन जी आपसे मैं सवाल करूं, इससे पहले कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जो कि आर्थिक मोर्चे हैं उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी है। जैसे कृषि क्षेत्र में हम देखते हैं तो महिलाओं की भागीदारी वर्कफोर्स में सबसे ज्यादा मानी जाती है, वो 48% के आसपास है। हालांकि ये चिंता जरूर है कि जो कृषि भूमि उनके नाम पर है वो 13% के आसपास ही है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 20% के आसपास है, जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। सेवा क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी की अगर मैं बात करूं तो 30% के आसपास उनकी भागीदारी है। आप कैसे देखती हैं इन सभी क्षेत्रों को, और जैसे कि ये नीतियां महिलाओं के लिए बनाई गई हैं और कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि जो कृषि क्षेत्र के अलावा जो दूसरे सेक्टर हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो जिसमें कि महिलाएं आगे आ सकती हैं, वर्कफोर्स जो है उसमें महिलाएं आगे आ सकती हैं, और जो दूसरे तमाम क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से महिलाएं आगे आ सकती हैं, और जो नीतियां हैं वो किस तरह से प्रोत्साहन दे रही हैं कि कृषि के अलावा भी तमाम अन्य क्षेत्रों में महिलाएं अपनी हिस्सेदारी निभाएं।
देखिए कमल जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रहता है कि क्या महिला के पास बैंक अकाउंट है। अगर बैंक अकाउंट है तो क्या उस बैंक अकाउंट को वो ऑपरेट करती है, क्या उसके पास मोबाइल फोन है, अगर है तो क्या वो उस मोबाइल फोन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती है। तो इस लेवल की जो बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी और बेसिक इंडिपेंडेंस है वो सरकारी माध्यम से महिलाओं को दी जानी चाहिए, और वो एक मोमेंटम जो पकड़ा हुआ है स्कीम्स के तहत वो चलता रहना चाहिए। इसमें जैसे कि आपने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े दिए कि ट्रेडिशनली ही महिलाओं का एग्रीकल्चर में रोल रहा है, लेकिन हमारे लिए चैलेंज ये है कमल जी कि क्या हम अब जो ये स्ट्रक्चर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, हमने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन क्या हम महिलाओं को एनकरेज करेंगे कि वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को यूज करें। जैसे अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उठा के देखें जो आखिर में आया है अभी 2019 और 21 को कवर करता हुआ, NFHS 5 जिसको हम कहते हैं, तो उसमें एक आंकड़ा हमें बताता है जो अच्छा पॉजिटिव इंडिकेटर है, वो तो ये है कि NFHS 4 के कंपैरिजन में जो 2015-16 में आया था उसके कंपैरिजन में 19-21 में पहले 53% महिलाएं जो थीं उनके पास जो बैंक अकाउंट थे वो यूज करती थी, ये प्रतिशत बढ़कर 79% हो गया है। ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है जो हमें ये बता रहा है कि महिलाओं की एक्चुअल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ रही है। लेकिन जो आंकड़ा हमें थोड़ा सा वरी करता है वो ये है कि हालांकि जैसे कि आपके एक्सपर्ट कह रहे थे कि क्रेडिट लेने की जो ताकत है महिलाओं की बढ़ी है, लेकिन अभी तक भी सिर्फ 11% महिलाएं ऐसी हैं हमारी देश की पूरी पॉपुलेशन में जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में माइक्रो क्रेडिट अवेल किया है। तो इस फिगर को बढ़ाने की जरूरत है। अवेयरनेस बढ़ रही है, अवेयरनेस बहुत बड़ी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने पहली बार फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पे सर्वे किया पिछली बार, और उन्होंने ये पाया कि करीब 50% महिलाओं को पता है माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स के बारे में, लेकिन अभी भी 11% महिलाएं उसको अवेल कर रही हैं। तो ये गैप हमको भरना है, ये एक चैलेंज रहेगा सरकार के लिए। और ये भी हमें देखना होगा कमल जी कि हमें जो जैम ट्रिनिटी सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिनिटी है, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल फोन, ये तीनों महिलाओं के पास सशक्त तरीके से हों। मोबाइल फोन अगर है तो वो इस्तेमाल करती हों। अभी हमें आंकड़ा ये बताता है कि महज 22% महिलाएं जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं वो मोबाइल फोन से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रही हैं। तो जिस दिन महिलाएं फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस भी करने लगेंगी मोबाइल से और अपने अकाउंट को इंडिपेंडेंटली भी ऑपरेट करने लगेंगी, वो एक ऐसा दिन होगा जब एक्चुअल रियल जेन्युइन मामले में हम उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कह सकेंगे। नहीं तो क्या होता है ना कमल जी, आप अकाउंट खुलवा देते हैं लेकिन वो इनएक्टिव रहता है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है कि चलिए नरेगा का पैसा आ गया विदड्रॉ कर लिया। लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक माध्यम है
जी।
और सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है कि कैश ट्रांसफर जो अकाउंट में महिला के जा रहा है वो उसको फाइनेंशियली बहुत डिसीजन मेकिंग की पावर दे रहा है हाउसहोल्ड में। पहले क्या होता था, आप कैश पकड़ा देते थे हाथ में, वो कैश घर का आदमी ले जाता था
जी,
इधर उधर की चीजों में खर्च हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि DBT के माध्यम से महिलाओं के अकाउंट में उनके मेहनताने जा रहे हैं जैसे एम नरेगा का पैसा, तो उनकी इंडिपेंडेंस है ना कमल जी कि वो किस चीज के लिए उस पैसे को निकालेंगी। फिर वो उस पैसे को बच्चे के एजुकेशन के लिए यूज करेंगी, बच्चों की हेल्थ के लिए यूज करेंगी, अपनी हेल्थ सर्विसेज के लिए यूज करेंगी। ये फर्क रहता है DBT और कैश डॉल में, तो इसमें हम बिल्कुल सही जा रहे हैं
जी। सोनल जी, जैसा कि रिपोर्ट में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है कि ऋण लेने में अभी भी कौन सी दिक्कतें हैं महिलाओं को, उसका भी जिक्र है, तो इन बातों के बारे में अगर आप संक्षेप में बता पाए।
कमल जी, जैसे रिपोर्ट बोलता है कि ऑफ कोर्स क्रेडिट लेने की क्षमता बढ़ी है और महिलाओं का इंटरेस्ट जिसमें वो क्रेडिट इंक्वायरीज कर रही हैं वो भी काफी बड़ा है, तो वो ये भी देख रही है इंक्रीजिंगली कि वो कितना क्रेडिट ले सकती हैं कंफर्टेबली, कितना बिजनेस के लिए ले सकती हैं, कितना पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले सकती हैं। सो वो इंक्वायरीज भी बढ़े और एक्चुअल बिजनेस लोन्स भी बढ़े हैं। हाउएवर ये बिल्कुल सही बात है कि जितना बिजनेस लोन्स और बढ़ सकते हैं, बहुत सारा रूम टू ग्रो है अभी। वुमेन को और भी काफी ज्यादा लेंडिंग हो सकती है स्पेशली फॉर बिजनेस और उनके एंटरप्रेन्योरशिप एंडेवर्स के लिए, उससे अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि काफी बड़ा हमारा वुमेन वर्कफोर्स है और वर्क फोर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी हमारा पिछले 2 सालों में काफी बड़ा है. सो अगर उन नंबर्स के साथ आप कंपेयर करें तो फिर भी हमारा द रेट ऑफ राइज ऑफ बिजनेस क्रेडिट उसके उसके प्रोपोर्शन में इतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी द इंक्रीजिंग ट्रेंड इज वेरी गुड. सो द मेन बैरियर्स जिनको हम
जी
बोलते हैं कि जो की दिक्कतें महिलाओं को आती हैं क्रेडिट अवेल करने में, वो ये है कि उनके पास ट्रेडिशनली गारंटर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं होते. सो उनके बिजनेसेस ज्यादातर इनफॉर्मल बिजनेसेस होते हैं. इतना बहुत ज्यादा बिजनेस एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं होता कुछ महिलाओं को. डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से, कोलैटरल नहीं होने की वजह से बैंक्स इतना भरोसा नहीं करते कि उनको बड़ा टिकट साइज का लोन दिया जा सकता है. सो अगर आप ओवरऑल लैंडस्केप देखेंगे तो महिलाओं का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन माइक्रो क्रेडिट में आपको दिखेगा, जो कि कोलैटरल फ्री लेंडिंग होती है माइक्रो कमर्शियल माइक्रो फाइनेंस के द्वारा और जो SHG बैंक लिंकेज के द्वारा होती है. लेकिन जो रिटेल लेंडिंग है उसमें वो आंकड़े आपको बहुत कम होते हुए नजर आएंगे. MSME लेंडिंग में आप देखें तो सिर्फ 7% MSME लेंडिंग महिलाओं को जाती है. इसीलिए ये आंकड़े बहुत जरूरी है कि कितनी महिलाएं इस 1.5 लाख जो एवरेज टिकट साइज होता है माइक्रो फाइनेंस का, उससे ऊपर उठ के भी लोन ले पा रही हैं. क्योंकि अगर
जी
उन्हें ऐसे बिजनेसेस चलाने हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट भी उस प्रोपोर्शन में डालना पड़ता है बिजनेस में. सो ऐसे बड़े बिजनेसेस, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेसेस क्रिएट करने के लिए महिलाओं को अभी भी बहुत बड़े टिकट साइज का क्रेडिट मिलना काफी मुश्किल होता
जी
है. और उनके पास ट्रेडिशनली गारंटर्स, कोलैटरल, जमीन भी नहीं होती महिलाओं के नाम पे, तो वो सबसे बड़ी दिक्कतें वो होती हैं एक बिगर टिकट साइज क्रेडिट को अवेल करने के
जी
लिए. और एक दूसरा बड़ा बैरियर ये भी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी होती है कि मुझे क्रेडिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. अगर मैंने ले लिया तो क्या मैं इसको रीपे कर पाऊंगी अगर बिजनेस इनकम वॉलेटाइल हुआ, तो वो काफी सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है. जैसे हमने रिपोर्ट में ये भी डिस्क्राइब किया है कि वुमेन का जो क्रेडिट जर्नी है, मेरे डिसाइड करने से लेकर एक्चुअली क्रेडिट लेने तक, वो जर्नी काफी नॉन लीनियर जर्नी है. वो ऐसा नहीं है कि मैंने डिसाइड किया ये है कोलैटरल, ये है डॉक्यूमेंट और मुझे लोन मिल गया. सो इट इज अ वेरी नॉन लीनियर पाथ फॉर वुमेन. इसीलिए वुमेन को एज अ डाइवर्स और डिस्टिंक्ट सेगमेंट समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियल सेक्टर को, ताकि हम जो बहुत बड़ा अनसर्व सेगमेंट अभी भी है देश में, उनको हम बेटर सर्व कर पाए विद क्रेडिट नीड्स.
अब हम चर्चा के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि हम अपने विशेषज्ञों की आखिरी टिप्पणी लें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि 8 तारीख को महिला दिवस के उपलक्ष्य में पंचायती राज मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। कल भी इस राष्ट्रीय कार्यशाला में एक विशेष अभियान शुरू किया गया था, पंचायत नेत्री अभियान, जिसमें कि महिलाओं के पंचायत में प्रतिनिधित्व पर बात हुई थी। और आज एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत कार्यक्रम। हमारे संवाददाता इस कार्यशाला में पहुंचे थे और उन्होंने कुछ ग्राम प्रधान महिलाओं से बात की थी। उनसे जाना कि इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, साथ ही उन्होंने कुछ ग्राम प्रधान महिलाओं से ये भी जानने की कोशिश की कि अपने क्षेत्र में वो किस तरह से काम कर रही हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो आइए कुछ ग्राम प्रधान महिलाओं से उनके वक्तव्य सुनते हैं।
मैं बिहार से लखीसराय जिले के नोनगढ़ पंचायत से हूँ और मैं मुखिया हूँ। मेरा नाम जूली देवी है। आज आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत का शुभारंभ हुआ है। जिन जिन ग्राम पंचायतों को चुना गया है वही यहाँ पे उपस्थित हैं और उनको ही बुलाया गया है, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबसे पहले हम लोगों के द्वारा उन्हें सार्वजनिक रूप से ग्राम सभा करके वहाँ उनको बिठाया जाएगा, समझाया जाएगा और उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, चाहे वो बेटियाँ हों चाहे वो महिलाएं हों।
नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा गंगवार है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले से अलहिया ग्राम पंचायत से हूँ और मैं ग्राम प्रधान हूँ। 2021 में मैंने पहला अपना चुनाव लड़ा है। मुझे सामाजिक रूप से रहना, लोगों के साथ उठना बैठना, खासकर महिलाओं के कुछ पक्ष हैं, कुछ पहलू हैं, उन पे काम करना शुरू से ही पसंद था। इससे पहले मैं अपने एक NGO के थ्रू मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे जाती थी, गाँव में उठती बैठती थी, लोगों के बीच में अवेयरनेस हम लोग कार्यशालाएं लेते थे, तो उसी से प्रेरित होकर या पसंद करके लोगों ने मुझे एक नई एक और जिम्मेदारी दी है और जिसको मैं बखूबी निभाना चाहती हूँ और पूरा 100% इस पर खरा उतरना चाहती हूँ।
मेरा नाम सपना है, मैं झारखंड से हूँ, गोड्डा जिला पुड़ैयाहाट प्रखंड की मुखिया। मेरे पंचायत में महिलाओं के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, जैसे ग्राम सभाओं में महिला की उपस्थिति का बढ़ना, और किसी भी जिला स्तरीय सभा या ब्लॉक स्तरीय सभा में हम जाते हैं तो वहाँ महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा होती है। शायद महिला मुखिया होने की वजह से भी महिलाओं को बढ़ावा मिला है, वो पंचायत में बेझिझक आती है और उनको अपनी समस्या के समाधान के लिए मतलब कि पुरुषों का मुंह नहीं देखना पड़ता है, वो फोन से या फिर आके या फिर जैसे भी हो अपना काम खुद कर रही है। वो काम जो पहले पुरुष के बिना नहीं हुआ करते थे अब महिलाएं खुद से कर रही है, तो लगता है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं। पंचायत में हम लोग महिलाओं के साथ साथ बालिकाओं पर भी ध्यान देते हैं, उनको समझाते हैं कि शिक्षा कितनी जरूरी है, आगे क्या करना है, सैनिटरी पैड कैसे यूज करना है, और जो जो समस्याएं हैं महिलाओं से रिलेटेड उनको बताते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। और फिर जैसे बच्चियां स्कूल में है तो उनको एक एम देते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे।
प्रोफेसर रामास्वामी, एक अंत में आपकी टिप्पणी भी लेना चाहूंगा कि महिलाओं का अगर हम एक समावेशी विकास चाहते हैं आर्थिक सामाजिक हर तरह से, तो क्या अप्रोच हमारी और होनी चाहिए?
देखिए, नीतियों की कमी नहीं है, पर एक बहुत बड़ा सवाल जो जब भी हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट ऑफ डबल बर्डन, महिलाओं के ऊपर जो पूरा काम का जो बोझ पड़ जाता है, वर्किंग मदर्स जो बोलते हैं, उनका जो प्रॉब्लम्स है, घर भी संभालो, बच्चे भी संभालो, बाहर की दुनिया में जाके काम भी संभालो, जो डबल बर्डन जो महिला फेस करती है, और खासकर साउथ एशिया में, और यहाँ पे औरतें जो है 20% मोर काम करते हैं देन मेन, ये एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जो बात है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये एक अभी भी बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में। ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये प्रॉब्लम इतना नहीं है क्योंकि इक्वल वर्क एंड इक्वल पे तो है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो 94% है इस देश का, वहां पे इक्वल पे तो है ही नहीं।
अदिति जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो महिलाओं का अगर आर्थिक समावेश है उसकी दृष्टि से ही पूछूं तो किस अप्रोच को लेकर आगे चलना होगा? एक जैसे डिजिटल साक्षरता पर मैं आपकी जरूर टिप्पणी चाहूंगा कि सरकार फोकस कर रही है कि महिलाओं की डिजिटल लिटरेसी बढ़े, हमें कितनी गति से काम करना होगा, कैसे उन्हें हर तरह से शिक्षित करके या डिजिटली साक्षर करके हम आगे उनके रोल को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
देखिए, दो तरीके से महिलाओं की फाइनेंशियल इंक्लूजन को और भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। एक तो ये है कमल जी कि जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जिनको हम कहते हैं, जिनका ये काम होता है कि घर घर जाकर बैंकिंग सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन लोगों को दें, तो इस वक्त हमारे भारतवर्ष में 10% ही ऐसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो महिलाएं हैं। अब अगर महिलाओं का इकोनॉमिक इंक्लूजन करना है तो आपको महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की तादाद बढ़ानी होगी। जैसा कि हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर में आशा वर्कर्स को लाने के बाद कैसी रेवोल्यूशन आई। दूसरा, आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन जो भारत सरकार की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसमें एक डेडिकेटेड कंपोनेंट चाहिए जिसमें तमाम गांव में, अर्बन एरियाज में भी डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि गांव की महिला को ही डिजिटल लिटरेसी देने की जरूरत है, बहुत सारी शहरों में भी ऐसी महिलाएं हैं जो डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भी करने में हिचकती हैं, तो ये भी करना जरूरी है। तीसरा, मुझे लगता है कि जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा फाइनेंशियल मार्केट्स में आते रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टडीज होनी चाहिए जिससे कि हमें ये पता लगे कि महिलाएं कैसे प्रोग्रेस कर रही हैं। एक बहुत अच्छी बात जो हमें देखनी होगी कमल जी, वो ये है कि जहां तक माइक्रो क्रेडिट का सवाल है, महिलाएं बहुत ही बैंकेबल, बहुत ही रिलायबल कस्टमर्स होती हैं क्योंकि वो अपने लोन को हमेशा चुकाती हैं।
बिल्कुल, ये और रिपोर्ट में भी जो हम जिक्र कर रहे थे ये बात सामने आई है कि महिलाएं विश्वसनीय एक क्रेडिट उधारकर्ता होती हैं।
बिल्कुल, तो बैंक्स चाहते हैं कि महिला कस्टमर्स की तादाद बढ़े, उसके लिए जैसा कि मैंने कहा ये इनिशिएटिव्स हो सकते हैं।
बिल्कुल, तो जिस तरह से चर्चा में निकल कर आया उसका एक हम अगर निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी भारत के एक समृद्ध आर्थिक भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, और जिस तरह से सरकारी नीतियां और वित्तीय समावेश को लेकर सरकार के प्रयास हैं और जो वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे बैंकिंग व्यवस्था हो और तमाम संस्थाएं, और साथ में सामाजिक जागरूकता, इन सभी के समन्वय से हम देख सकते हैं कि अगर ये सही से आगे बढ़ते हैं तो महिलाएं आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, सशक्त हो सकती हैं, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम महिलाओं की जो नीतियों के स्तर पर भागीदारी है उससे ज्यादा हम व्यवहारिक तौर पर उनकी बढ़ती हुई भागीदारी को देख पाएंगे और देश की आर्थिक प्रगति को और ज्यादा मजबूत होता हुआ देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का, आप कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा किए।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत की आर्थिक तरक्की में महिलाओं के बढ़ते योगदान पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रही थी महिलाओं से संबंधित मामलों की विश्लेषक प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी, वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन और नीति आयोग द्वारा महिलाओं की वित्तीय भागीदारी से जुड़ी हालिया रिपोर्ट की सहलेखक सोनल जेटली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।